ओमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीनबंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद्भागवतम स्कंध छ अध्याय दो श्लोक संख्या 34। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्व च अहम् चाहम् कितवः पापः ब्रह्मग्नः निरपत्रपः। क्व च नारायण इति एतत् भगवन्नाम मंगलम्। क्व चाहम् कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः। क्व च नारायणत्येतत् भगवन्नाम मंगलम्। क्व कहा च भी अहम् मैं कितवः वंचक ठग पापः मूर्त रूप में सारे पाप ब्रह्मग्नः ब्राह्मण संस्कृति का हत्यारा निरपत्रपः निर्लज। क्व कहा च भी नारायण नारायण इति इस प्रकार एतत् यह भगवत नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम मंगलम सर्वमंगलप्रद। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, अजामिल कहता रहा, मैं ऐसा निर्लज ठग हूं जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी है, निसंदेह है मैं साक्षात पाप हूं, भला मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से नारायण या कृष्ण के पवित्र नाम का प्रसार करने वालों को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें आने के पूर्व हमारी स्थिति क्या थी और अब वह क्या है। हम मांसाहारी, शराबी तथा स्त्री आखेटकों के गर्हित जीवनों में जा गिरे थे, जिनमें सभी प्रकार के पाप कर्म हमने किए, किंतु अब हमें हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करने का सुअवसर प्रदान किया गया है, अतएव हमें इस सुअवसर को सदैव प्रशंसा करनी चाहिए। भगवत कृपा से हम अनेक शाखाएं खोल रहे हैं और हमें इस सौभाग्य का लाभ भगवान नाम का कीर्तन करने तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने में उठाना चाहिए। हमें अपनी वर्तमान तथा विगत स्थितियों के बीच जो अंतर है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए और हमें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हम सर्वोच्च जीवन से नीचे न गिर जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग अजामिल के अनुताप को सुन रहे हैं। आप घटना जानते हैं कि अजामिल को नरक ले जाने के लिए जमदूत उपस्थित हो गए। उनको देख करके वो बहुत भयभीत हुआ और भय के मारे बहुत जोर से अपने पुत्र को पुकारा, जिसका नाम नारायण था। लेकिन ये चार अक्षर सुनते ही भगवान के पार्षद वहाँ आ गए और उनको जमदूतों के मुक्त कर दिया। इसी क्रम में जमराज के और भगवान विष्णु के दूतों के बीच में संवाद हुआ, बातचीत हुई, तो उसको अजामिल बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो अजामिल के स्थिति पर विचार करें तो तीन चीज है। एक तो जमराज के दूतों को देख करके बहुत भयभीत हो गया, क्योंकि उनका रूप ही ऐसा था, वेशभूषा ऐसा था कि उसको देखने मात्र से वह भयभीत हो गया। और दूसरी तरफ है, जो भगवान के दूत थे उनका रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर वस्त्र पहने थे, आभूषण धारण किए थे कि उनको देखते ही उसके हृदय में आनंद का संचार हो गया। और दोनों में बातचीत हो रही है तो समझ रहा है कि तो हमारे ऊपर डिस्कशन चल रहा है। जब भगवान के दूत उसको छुड़ा दिए जमराज के दूतों से, वो बहुत प्रसन्न हुआ और सबसे पहले तो भगवान के दूतों को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करने के बाद अब उनसे कुछ कहना चाहता था, भगवान का जस गाना चाहता था, तब तक भगवान के दूत अंतर्हित हो गए। तो भगवान के दूत अंतरहित हो गए और जमराज के दूत भी चले गए तो अकेले बचा। अब अजामिल कई एक स्थिति पर विचार कर रहा है। सबसे पहले उसे अपने पूर्व जीवन का स्मरण हो रहा और वो बहुत आश्चर्य में है कि इतना सुंदर दृश्य हमको देखने को कैसे मिल गया, इतने सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ। पहले तो आश्चर्य में है कि वास्तव में प्रत्यक्ष देखा कि ऐसा सपना देखा, ये क्या था, ये बहुत आश्चर्य में था। लेकिन अब उसको प्रसन्नता थी भगवान के दूतों के दर्शन करके, और वो बहुत हैरत में था कि वे कहाँ चले गए और अपने जीवन का स्मरण करके, पूर्व जीवन का स्मरण करके वे बहुत संताप अनुभव कर रहा। इन श्लोकों को आप सुन चुके हैं। वे अपने को कह रहा है कि वास्तव में मैं तो अपने कुल का कलंक हूँ, क्योंकि दुष्कृतम, मैं दुष्ट प्रकृति का बुरा कर्म किया, जो जो कार्य किया वो हमारे कुल के अनुरूप नहीं था। हम तो कुल कंजलम, हम तो अपने कुल के लिए कलंक है। भी क्यों अपने को कलंक कह रहा है तो इस विषय में कह रहा है, हित्वा बालम सतिम योहम सुरापिम असतिम अगात। कहा कि हमारी पत्नी है जो कम उम्र की है, बाला, और पति व्रता है, इन उसका मैं त्याग कर दिया। और सुरापाम असतिम अगाम, और जो शराब पीने वाली है, कुल्टा है, बेस्या है, उसका संग किया। और हम तो अपने कुल के लिए कलंक हो गए। और अपने दुष्कर्म का स्मरण कर रहा है कि वृद्धौ अनाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ अहो मया धुना त्यक्तौ अकृतज्ञेन नीचवत। बिल्कुल मैं नीच हूँ, अपने माता पिता का त्याग कर दिया। अपने माता पिता के विषय में कह रहा है कि वृद्धौ, वे वृद्ध थे, अनाथौ, उनके कोई रक्षक नहीं थे। कभी कभी होता है कि माता पिता के कई एक संतान हैं तो एक पुत्र कहीं दूर भी है तो दूसरा पुत्र उनका सहायता करता, रक्षा करता है। लेकिन अजामिल अपने माता पिता के विषय में कह रहा है कि एक तो वृद्ध है और दूसरे अनाथ हो, उनका सहायता करने वाला कोई दूसरा नहीं था, नान्य बंधु, उनके और कोई सहायक नहीं थे, तपस्विनौ, वे बहुत दुखी थे, और इस स्थिति में मैं उनका त्याग किया। अकृतज्ञेन, हम इतना नीच हैं कि उनके उपकार के तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं गया। अरे माता पिता उपकार किए, शरीर दिए हैं, इसको जन्म दिए, इसका पालन पोषण किए हैं, तो अकृतज्ञेन, मैं उससे तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। और कह रहे हैं कि हम तो निश्चित नरक में जाएंगे, अकृतज्ञेन। वास्तव में है माता पिता का त्याग कर देना, खास करके वृद्धावस्था में है, असहाय है, तो इसको बहुत भारी पाप माना गया, बहुत भारी दोष माना गया। भगवान कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा वापस गए और कंस का वध करके देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किए, और देवकी वसुदेव तो उनका आलिंगन कर रहे थे लेकिन भगवान उनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना कर रहे थे कि हमको क्षमा कीजिए, हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सके। उस क्रम में कह रहे हैं कि सर्वार्थ संभवो देहो जनित पोषितो यत न तयोर यात निर्वेशम पित्रोर मर्त्य स्वतायुषा, कह रहे हैं सर्वार्थ संभवो देहो, यह जो शरीर है वह इसी से किसी अर्थ को प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी अर्थ को, किसी भी पुरुषार्थ को, शरीर पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए शरीर साधन है। तो सर्वार्थ संभवो देहो, ये देह की महिमा को बतला रहे हैं कि चार पुरुषार्थ इसे प्राप्त किया जा सकता है। और चार पुरुषार्थ की बात क्या है, पंचम पुरुषार्थ के लिए भी यही साधन है। इसी से कह रहे हैं कि सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो ये जाए, और इस देह का जो जन्म दिए, जो पालन पोषण किए, यदि सतायुषा पूरे 100 वर्ष तक माता पिता की सेवा करे, फिर भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यद्यपि ऐसी तो संभावना ही कम है, मर्त्य ये जो शरीर है सर्वार्थ संभव है, सबका साधन है, लेकिन इसका एक और विशेषता है कि क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, मर सकता है व्यक्ति कभी भी, लेकिन कदाचित वो पूरे आयु तक जीवित रहे, 100 वर्ष तक जीवे, लेकिन फिर भी माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। और यश तयो आत्मज कल्प आत्मना च धने न च वृत्तिम न दद्यात् वृत्तिम न दद्यात् तम प्रत्य स्वमांसम खादयन्ति। और कह रहे हैं कि जो बेटा कल्प उस समर्थ है, सक्षम है, और अपने शरीर और धन से माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, उनकी सहायता नहीं कर रहा है, तो वो बहुत भारी अधोगति को प्राप्त होगा। कह रहे हैं भगवान कि उस व्यक्ति को तो मरने के बाद यमराज के दूत उसी के मांस को खिलाते हैं। जो माता, जो बेटा सक्षम है, समर्थ है, और अपने धन और शरीर से माता पिता की सहायता नहीं कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, तो सीधे नरक में यमराज के दूत उसके मांस को काटते हैं और उसी को खाने के लिए बाध्य करते हैं। बहुत भारी दोष है। तो इन सब सिद्धांतों का स्मरण कर रहा है अजामिल और बहुत दुख अनुभव कर रहा है। भगवान आगे कह रहे हैं कि मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्प विभ्र च्वसन मृत। कह रहे हैं कि जो माता का, पिता का जो वृद्धावस्था को प्राप्त है, और भार्या साध्वी पत्नी जो पतिव्रता है, सुतम शिशुम और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इनका जो पालन नहीं करता है कल्प समर्थ होने पर भी, तो यही समझिए कि जीते हुए मरा व्यक्ति है, सांस तो ले रहा है लेकिन मरा हुआ है। तो भगवान ने मातरम पितरम वृद्धौ, माता पिता के लिए कह रहे हैं कि वृद्ध माता पिता, और भार्या साध्वी पत्नी सती है, पतिव्रता है, और सुतम शिशु बच्चे छोटे छोटे हैं, शिशु हैं, लेकिन तीन लोगों का कोई विशेषण नहीं दे रहे। गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, गुरु ब्राह्मण और शरणागत, तो तीन के विषय में कोई कंडीशन नहीं डाल रहा है। इसका अर्थ है कि गुरु का, ब्राह्मण का और शरणागत का सदैव भरण पोषण करना चाहिए। वो 6 लोगों का गिनती कर रहा है, मातरम पितरम वृद्धो, माता पिता जो वृद्धावस्था को प्राप्त हैं, और भार्या साध्वी पत्नी जो सती है, पतिव्रता है, और सुतम शिशु पुत्र जो छोटे अवस्था के, तो इनके साथ तो कुछ शर्त रख रहे हैं, लेकिन तीन के साथ कोई शर्त नहीं है, गुरु ब्राह्मण और शरणागत। वो आशय यह है कि जो तीन है तो इनका हर अवस्था में पालन पोषण करना होता है, इनकी सहायता करनी होती। और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो जीते हुए भी मुर्दा के समान है, मरा हुआ व्यक्ति है। वो अजामिल को बहुत अनुताप हो रहा है कि हमारे माता पिता तो वृद्ध थे, पत्नी सती थी, और अपने माता पिता के विषय में सोच रहा है कि उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था और मैं उनको छोड़ दिया, उनका त्याग किया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं बहुत भारी पापी हूँ और हमें नरक में जाना पड़ेगा, हमारी बहुत अधोगति होगी। लेकिन जब उसका ध्यान भगवान के दूतों के तरफ जाता है तो बहुत आश्चर्य में पड़ता है कि वे लोग गए कहाँ। अतते को गता सिद्धा चत्वारह चारु दर्शन, वे बहुत सुंदर दिख रहे थे, उनका रूप बहुत मनोहर था और हमको मुक्त किए। वो बहुत आश्चर्य में है कि आखिर वैसे व्यक्ति का दर्शन हमको कैसे हो गया, मैं तो बहुत दिन से निरंतर पाप में लगा हुआ हूँ, एक एक से दुष्कर्म कर रहा हूँ, वो आखिर ऐसे सुंदर पुरुष का, भगवान के भक्तों का दर्शन कैसे हुआ। तो वह विचार कर रहा है कि भवितव्यम मंगलेन जिनात्मा में संप्रसिद्धति, इस जन्म में तो कोई वैसा पुण्य दिख नहीं रहा है, लेकिन किसी न किसी जन्म में मैं कुछ पुण्य जरूर किया होऊंगा, तभी ऐसे सुंदर पुरुषों का दर्शन हुआ, भगवान के भक्तों का दर्शन हुआ। और भी वो अनुमान कर रहा है कि हम कुछ न कुछ पुण्य पिछले जन्म में जरूर किए होंगे, अन्यथा म्रियमाणस्य नासुचर विसलित पते है वैकुंठ नाम ग्रहण जिह्वा वक्तुमिहार हति। वह तो अपने पुत्र को पुकारा था, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रवचन को सुन करके उसको यह बात समझ में आ गई कि मैं भगवान का नाम बोला। अपने तरफ से तो भगवान का नाम नहीं बोला था, लेकिन भगवत दूतों के प्रवचन से तो उसको समझ में आ गई कि हमारे जिह्वा पर भगवान का नाम आया है। वो कह रहे कि यदि हम पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म नहीं किए हैं, कोई सुकृत नहीं है, तो हमारे मुंह पर भगवान का नाम कैसे आ जाएगा। उस नाम के विषय में कह रहा है ना सुचर विश्लेर प्रत्ये, पहले तो अपने विषय में कह रहा है कि मैं बिल्कुल अपवित्र था, अरे वेश्या का पति था, और मरते समय भगवान का नाम हमारे मुख पर आ गया, कोई न कोई पुण्य होगा पिछले जन्म का। भगवान के नाम की महिमा को बतला रहा है, वैकुंठ नाम ग्रहण जिह्वा वक्तुमिहार हति। वैकुंठ नाम ग्रहण, वैकुंठ का भगवान का नाम हमारे जिह्वा पर आया, अरे कोई विशिष्ट चीज है क्या। तो कह रहे हैं ग्रहण वैकुंठ नाम का, भगवान के नाम का विशेषण दे रहा है ग्रहणम। ग्रहणम का क्या अर्थ है, ग्रहणम का एक अर्थ है कि जिसके द्वारा गृहित हो जाए, निगृहित हो जाए। ये भगवान के नाम के विषय में कह रहा है कि जिसके द्वारा मन संयमित हो जाता है, उस भगवान के नाम का मैं उच्चारण किया तो किसी पुण्य का ही फल होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषण है। भक्त लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं कि हमारा मन बहुत इधर उधर जा रहा है, हम कैसे मन को केंद्रित करें। यहाँ अजामिल उत्तर दे रहा है, वैकुंठ नाम ग्रहण, मन को कंट्रोल करने वाला, निग्रहित करने वाला, एकाग्र करने वाला भगवान का नाम है। या दूसरा अर्थ लें तो वैकुंठ नाम ग्रहण, अरे भगवान का जो नाम है तो वैकुंठ को प्राप्त करा देता है। या तीसरा अर्थ करे तो वैकुंठ नाम ग्रहण, के ये जो वैकुंठ नाम है तो भगवान को प्राप्त करा देता है। देखिए ये नाम शब्द है तो इस पर आप विचार करें संस्कृत के हिसाब से तो नाम का अर्थ होगा झुकाने वाला। ये नाम शब्द है तो नम धातु से बना है, नम मतलब झुकना, तो नाम का अर्थ है झुकाने वाला। तो दूसरे नाम में ये शक्ति हो या न हो, भगवान के नाम में तो शक्ति है कि वो भगवान को खींच करके नजदीक ला देता है। नाम का अर्थ है कि जो नामी को खींच करके ला दे, वो भगवान के नाम की विशेषता है कि वो भगवत प्राप्ति करा देता है। वो इतना महत्वपूर्ण नाम है। और हम मरते समय हमारे जिह्वा पर आया तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमारा पुण्य होगा। और वो अनुमान कर रहा है कि यह नहीं, वो अनुमान कर रहा है कि कुछ न कुछ पुण्य होगा। और इसके इस उक्ति पर श्रीपाद जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि इससे ध्वनित हो रहा है, समझा जा सकता है कि अजामिल पहले कभी भक्ति किया होगा लेकिन अपराध के चलते वह भक्ति आवृत हो गया था, ढक गया था। लेकिन क्षण संगे न साधु सो, भगवान के भक्तों के संग से वो भक्ति फिर प्रस्फुटित हो गया। वो अपने पाप पर विचार कर रहा है और अपने सौभाग्य पर विचार कर रहा है और इसके बाद वह निर्णय ले रहा है कि अब इस सौभाग्य को नहीं खोना चाहिए। ये बहुत भारी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो जो पीछे के श्लोक में कहा है नाम की महिमा को, तो उसी महिमा को ध्यान में रह करके अब अपने स्थिति पर विचार कर रहा है कि क्वा चाहम कितवह पापो ब्रह्मग्नो निरपत्र पर, कि मैं तो धूर्त हूँ, पापी हूँ, ब्राह्मण को कलंकित करने वाले हूँ, ब्राह्मण के सारे नियमों को धोने वाला हूँ, निर्लज हूँ, और क्वा च नारायण इति एतत् भगवन नाम मंगलम, और कहाँ नारायण भगवान का पवित्र नाम मंगल नाम हमारे जिह्वा पर आया। ये कितना हमारा सौभाग्य, किसी पुण्य जन्म का सौभाग्य है। ये विचार कर रहा है कि कुछ ना कुछ हम पुण्य किए होंगे तभी ऐसा संभव है। तो इस श्लोक में यह ध्वनि थे कि बहुत भारी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो कितव वह धोखा दे करके धन अर्जित करता था, वो उसको याद कर रहा है। पाप वेश्या के संसर्ग में आकर के एक एक से पाप किया, चोरी किया, अपहरण किया, जुआ खेला, शराब पिया, सब पाप किया। ब्रह्मग्न अरे कि ब्राह्मण का जो भी नियम था सब मैं समाप्त कर दिया। निरपत्र पह लज्जा को भी खो दिया। कभी कभी व्यक्ति सिलवान होता है, लज्जा से युक्त होता है, तो मन में पाप की प्रवृत्ति आने पर भी लज्जा बस रुक जाता है। लेकिन अजामिल कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल निर्लज था, वो मैं खुल करके दुष्कर्म किया, लेकिन उसके बाद भी क्वच नारायण इत्यत भगवान नाम मंगलम, हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम आ गया, वो किसी न किसी पुण्य का फल है। और उसके चित्त में परिवर्तन हो गया, अब वे भक्ति का निर्णय ले रहा है। तो आगे के श्लोक में कहा है सोहम तथा यतिष्यामि यत चितेन्द्रिया नील यथा न भूय आत्मान अंधे तमसी मज्जय। लेकिन अब तो हम सदा स्वतंत्र सावधान रहेंगे और ऐसा यत्न करूंगा कि अब पीछे के दुर्गति में कभी न पड़ूं। वो अपने स्थिति पर वो विचार कर रहा था कि इस जन्म में तो हमारा जीवन प्राय पापमय विचार बीता है और अब वह निर्णय ले रहा है कि अब हम उससे जरूर बचेंगे, अब किसी पाप में नहीं जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके लिख रहे हैं कि जो इस्कान के भक्त हैं तो उनको भी अपने पूर्व जीवन का स्मरण करके और बहुत सावधान रहना चाहिए। हम भक्तों के चरित्र को सुने, इनके जीवनी को जाने तो एक एक से बुरे बैकग्राउंड से लोग आए हैं। कुछ कुछ लोग हैं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं कि बहुत ही निम्न स्तर से आए हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि एक बार यह सौभाग्य प्राप्त कर लिए तो इस सौभाग्य को संजो करके रखना है। सुबह भक्तों के साथ भगवान के जस का गान करने को मिलता है, भगवान का दर्शन मिलता है, भगवान के गुण का श्रवण करने का अवसर मिलता है, भगवान के भोग लगाया हुआ प्रसाद मिलता है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और खास करके जो वृंदावन में है तो उनको वृंदावन का वास मिला है, तो व्यक्ति को सतत सावधान रहना चाहिए कि यह सौभाग्य हमारे हाथ से न निकले। अब वृंदावन का वास मिल गया तो बहुत इधर उधर जाने के लिए ललायत नहीं रहना चाहिए। ये वृंदावन के वास के सौभाग्य को संजो करके रखना चाहिए, कथा कीर्तन के सौभाग्य के संजो कर रखना चाहिए। अजामिल के जीवन में ये जो परिवर्तन आ गया, चेतना बिल्कुल परिवर्तित हो गई, और इसके विषय में तो विचार किया गया है। यह परिवर्तन भगवान के भक्तों के, विष्णु के दूतों के दर्शन करने से और उनके प्रवचन करने से आ गया। शास्त्रों में लिखा गया है कि क्षणमीय सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। कह रहे हैं कि क्षणमीय सज्जन संगति रेखा के एक क्षण के लिए भी भगवान के भक्तों का संग मिल जाए तो भवति भवार्णव तरणे नौका। तो यही समझिए कि इससे भव समुद्र में वे नौका के समान प्राप्त हो गया। जैसे कोई समुद्र में पड़ गया है तो तैर करके पार नहीं कर सकता, लेकिन नौका का अवलंबन मिल जाए तो पार चला जाएगा, किनारे चला जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग बहुत विषम स्थिति में हैं, लेकिन एक क्षण का भी भक्तों का संग हमको नौका के समान अवलंबन हो सकता है। और अजामिल के केस में यही हुआ है। सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं इति जात सुनिर्वेद क्षण संगेन साधुसु। उसके मन में वैराग्य आ गया, भोग की लालसा खत्म हो गई, भगवान के भक्ति का निर्णय ले रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्षण संगेन, थोड़े देर के लिए भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिला और उनके प्रवचन को सुनने का अवसर मिला। इसी का परिणाम है कि अजामिल के चेतना में बहुत भारी परिवर्तन आ गया। इसी से जो अपने भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो सदैव भगवान के भक्तों के संग की कामना करते हैं। श्रीमद् भागवतम में आप कथा सुनते हैं प्रचेताओं की। प्रचेता शिव जी के संग से, उनके उपदेश से भगवान का दर्शन प्राप्त किए। शिव जी उनको एक स्तोत्र सिखाए, एक गीत सिखाए, वो बहुत सावधानी से श्रद्धा पूर्वक वे गीत का पाठ किए, जप किए और उनके समक्ष भगवान प्रकट हुए और भगवान उनसे कहे कि वरम ब्रीडिस्व, तुम लोग वर मांगो। कहे वर मांगने को, वे लोग कुछ बोले नहीं, तो भगवान अपने से ही कई एक वर दे दिए। वे कहे कि जो तुम लोगों का स्मरण करेगा तो उसके भाइयों में प्रेम रहेगा। उनका कहे कि हम बहुत प्रसन्न है तुम्हारे सौहार्द से। वे अपने से कह रहे हैं कि तुमको ऐसा एक पुत्र प्राप्त होगा जो गुण में ब्रह्मा से कम नहीं है और तुम्हारा जस बहुत फैलेगा। वो विवाह का निर्देश किए तो इतना तो भगवान अपने से वर दे दिए, लेकिन यह भी ऑप्शन दिए थे, यह भी कहे थे कि वरम ब्रीडिस्व, तुम लोग वर मांगो। प्रचेता लोग चुपचाप थे, भगवान की स्तुति किए और भगवान से कहने लगे क्या हम लोग वर मांगे, आपकी प्रसन्नता ही हमारा वर है। और ये कह रहे हैं कि आपका हम दर्शन पा गए तो हम क्यों कोई दूसरा वर मांगे। पारी जाते जसा लब्ध है, अरे कोई भंवरा है तो उसको मधु की जरूरत है तो कई एक पुष्प पर दौड़ता रहता है, लेकिन यदि उसको पारिजात पुष्प प्राप्त हो जाए, पारिजात वृक्ष प्राप्त हो जाए तो फिर क्यों दूसरे वृक्ष के पास जाएगा। तो जब हम आपके चरण के नजदीक आ गए तो हम क्यों दूसरा वर मांगेंगे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि फिर भी हम लोग एक वर मांग रहे हैं कि हम लोगों का जन्म कहीं भी हो, भवत प्रसंग प्रसंगानम संग स्यात इति मे न वर। हम लोगों को यही वर है कि हम लोग किसी जन्म में जाए, आपके भक्तों का संग मिले। अरे भाई, जब भगवान मिल गए हैं तो भक्तों के संग का वर क्यों मांग रहे हैं। ध्यान देना चाहिए कि भगवान मिल गए लेकिन फिर भी भक्ति का तो अंत नहीं करना है, भगवान के साथ रह करके भी भक्ति की तो वृद्धि होनी ही चाहिए, भक्ति तो बढ़ती ही रहती है। तो भक्ति का स्वभाव ही है कि बढ़ती रहती है, तो भक्तों के संग की महिमा है। तो भगवान साक्षात दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन प्रचेता लोग वर यही मांग रहे हैं कि भगवान के भक्तों का संग हो, क्योंकि यह बहुत भारी खजाना है। और वे क्यों ऐसा वर मांग रहे हैं, वो अपने सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं कि अरे भगवान के भक्त जहाँ होते हैं तो उनके संग का ऐसा प्रभाव होता है कि राग द्वेष समाप्त हो जाता है और भगवान के कथा कीर्तन का अवसर मिलता है। तो ऐसे भक्तों का संग कौन नहीं चाहेगा। नहीं कि हम लोगों की बात तो दूर है, भक्त लोग पैदल विचरण करते हैं, इसके पीछे एक कारण है, तीर्थानम पावनिच्छया। तीर्थों की भी इच्छा होती है कि भगवान के भक्त हमारे संसर्ग में आवे, हम पवित्र हों। तो तीर्थों की इच्छा को देह करके भगवान के भक्त लोग पैदल चलते रहते हैं। ऊपर ऊपर अर्थ करने पर ऐसा लगता है कि तीर्थों को पवित्र करने के लिए भगवान के भक्त पैदल चलते हैं, पावने तीर्थानाम पावने छया। लेकिन वास्तव में ज्यादा समीचीन अर्थ यह है कि तीर्थानाम पावने छया, तीर्थों की इच्छा होती है कि हमको भी भक्त लोग पवित्र करें, तो उनके इच्छा को देख करके वे लोग पैदल विचरण करते हैं, तीर्थों में घूमते रहते हैं। जैसे कोई गृहस्थ है तो कभी कभी इच्छा प्रकट करता है, कोई साधु सन्यासी हमारे घर में आवे, जाने पर कहते हैं हमारा घर पवित्र हो गया। तो वैसे तीर्थों की इच्छा होती है कि हमारे घर में हमारे नजदीक वैष्णव आवे, भगवान के भक्त आवे, इसलिए वे पदभ्याम विचरतमा, वे पैदल ही विचरण करते रहते हैं। कोई साधु सन्यासी है तो किसी गृहस्थ के घर में क्यों जाता है, उसकी इच्छा को देख करके, वो चाहता है इसलिए उसके घर में चला जाता है। सन्यासी के रहने लायक गृहस्थ का घर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इच्छा को देख करके जाता है। तो उसी प्रकार प्रचेता लोग कह रहे हैं कि तीर्थानम पावन इच्छया, तीर्थों के ये इच्छा होती है कि भक्त लोग हमें भी पवित्र करें, तो इसलिए वे पैदल विचरण करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब तीर्थों के भी इच्छा होती है वो भीतस्य किम न रोचते, जो संसार भय से भयभीत है, भवबंधन से भयभीत है, ऐसा कौन होगा कि उसको भक्तों का संग अच्छा न लगे। तो जो बंधन में है वो भक्तों का संग बहुत पसंद करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि खास करके जो गृहस्थी के ताप को महसूस कर रहे हैं तो वे तो भक्तों को देख करके वैसे प्रसन्न हो जाते हैं जैसे मोर बादल को देख करके प्रसन्न हो जाता है। जैसे सावन में बादल को देख करके मोर प्रसन्नता के मारे नृत्य करने लगता है, तो उसी प्रकार जो गृहस्थी में तप्त है और अब थोड़ा मन में वैराग्य आ रहा है तो भगवान के भक्तों के आगमन से वे बहुत हर्ष प्रकट करते हैं। वो अजामिल भी भगवान के भक्तों को देख करके अपना सौभाग्य मान रहा है और वो निर्णय कर रहा है कि हम कोई पुण्य किए होंगे तभी ऐसा हमको सुअवसर मिला है, और अब पीछे जो हुआ सो हुआ, अब आगे मैं केवल भगवान के नाम गुण का कीर्तन करूंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। तो इस प्रकार अजामिल आगे क्या क्या बोल रहा है उसको हम लोग आगे के श्लोकों में सुनेंगे। हरे कृष्णा।